आज के प्रातः क्लास चल रहा था 29-8-64 शनिवार सातवें पेज के आदमी बात चल रही थी। यह जीव की आत्मा उन सबको दुख से मुक्त कर देते हैं। इसको कहा ही जाता है लिबरेट करने वाला। बाबा कहते हैं, मैं आता हूं तुम बच्चों को लिबरेट करके फिर जीवन मुक्त बनाता हूं। ऐसा जीवन मुक्त बनाता हूं कि तुम पहले भी जब सत्व प्रधान में आएंगे, जो भी आए, भले पिछाड़ी में आए, क्योंकि जन्म तो तुम 84 लेते हो, 80 भी लेते हो, 5 भी लेते हो, 2 भी लेंगे। दोबारा जन्म वाला भी होगा। जो पहले आएगा तो ऐसे में सुख भी देखेगा और फिर वहां ही दुख भी, क्योंकि जीवन मुक्त तो सब बनते हैं ना। फिर उसको कहा जाता है कि सदगति देने वाला सिर्फ एक राम। क्योंकि इस समय में सभी दुर्गति को पाए हुए हैं, साधु संत महात्मा जो भी धर्म स्थापक हैं, सब दुर्गति को पाए हुए हैं। बुद्ध जिसको कहा जाता है, क्राइस्ट जिसको कहा जाता है, धर्म स्थापक कहा जाता है ना, वो सभी पार्ट बजा बजा करके पुनर्जन्म लेते लेते आकर के अब तमो प्रधान बने। फिर मैं बैठ करके सबको इन दुख रूपी जन्म से छुड़ाता हूं। इसलिए कहा जाता है अंग्रेजी में लिबरेटर अथवा मुक्तिदाता, फिर जीवन मुक्तिदाता। तो बरोबर मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों ही मिलती हैं। मुक्ति माना ही अपने घर में जाना, साइलेंस वर्ल्ड में जाना, या अपने निराकारी या निर्वाण धाम में जाना। तुम समझते हो ना, ये वाणी कहां की बात है? तुम्हारे घर की बात है? वहां बाप निर्वाण धाम से आया हुआ है, फिर जिसको परलोक भी कहा जाता है, भी क्यों लगाया? क्योंकि इस लोक से पार है, इसलिए परलोक है, परे है। बी इसलिए लगाया कि कोई दूसरा लोक भी है जो इस लोक से परे है, तो परलोक दो हुए। एक मुक्तिधाम और दूसरा जीवन मुक्तिधाम, दोनों लोक इस दुख धाम से परे हैं। एक शांति का लोक, एक सुख का लोक। इस दुख धाम को परलोक नहीं कहेंगे, तो परलोक तुम्हारी बुद्धि में दो हैं, एक हमारा जो ऊंचते ऊंच लोक है जिसको परलोक कहा जाता है, तो दूसरा परलोक यह लोक। क्योंकि तुम परलोक को भी याद करते हो ना, लोक को भी याद करते हो, लोक माने ये संसार, निर्वाण धाम को भी याद करते हो, स्वर्ग को भी याद करते हो, परंतु ऐसे नहीं कि स्वर्ग कोई ऊपर में है, स्वर्ग भी परलोक है परंतु ऊपर में नहीं है। यही दुखधाम फिर सुखधाम बन जाता है। इसी सृष्टि की बात है, तो परलोक ऊपर में है, स्वर्ग को ऊपर नहीं कहेंगे, नहीं, ऊपर में तो निर्वाण धाम है। ये स्वर्ग और नरक तो फिर यहां होते हैं, स्वर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुम वहां स्वयं स्थिति में स्थित होते हो, स्व ग, स्व माने आत्मा, ग माने गया, आत्म की स्थिति में गया माना स्वर्गवासी हुआ। फिर है नरक, नरक कोई देवता को नहीं कहा जाता है, हाँ, नर पुरुषार्थ करके नारायण बनता है, तो साबित होता है कि नर पुरुषार्थहीनता की स्टेज में नरकवासी भी होता है, क्योंकि नर ही नरक बनाता है। तो बरोबर इस समय में सभी कुंभी पाक नरक में पड़े हुए हैं। इसको कुंभी पाक नरक कहा जाता है। इसको है द्वापर और कलयुग दोनों को नहीं, पिछाड़ी में चीज पकती है तो कलयुग को कुंभी पाक नरक कहा जाता है। एक दो में बहुत दुख खाते हैं, इसलिए उसको कुंभी पाक नरक कहा जाता है। गरुड़ पुराण में भी है ना, गरुड़ पुराण उसमें बहुत रोचक बातें हैं। क्यों ये रोचक बात बैठ करके दिखलाई है उन्होंने? इसलिए ये दिखाई है कि मनुष्य डरे, तुम पाप करेंगे तो गधे का जन्म लेंगे। फलाना बनेंगे तो पाप से बचें, इसलिए ये मनुष्यों ने बैठ करके कथाएं बनाई हैं। अभी ये जो बनाए हैं फिर भी बनेंगी। ये तुम्हारी गीता तो वहां होगी ही नहीं। कौन सी गीता है यह? माने ये सच्ची गीता तो वहां होगी ही नहीं, फिर भी वही गीता, क्योंकि शास्त्र तो चाहिए ना बड़े बड़े। शास्त्र माने ही शासन करने के विधान। तो मनुष्य ने ही बनाए हैं, और ये शास्त्र बनाना शुरू होते ही है द्वापर से। जिसे द्वैतवादी युग कहा जाता है, जबकि भक्ति मार्ग शुरू होता है। वो कोई अद्वैतवादी थोड़े ही कहेंगे। अद्वैत माने देवता, द्वैत माने दैत्य। तो भक्ति मार्ग में चाहिए तो सही ना, इसलिए उन्होंने बैठ करके बनाए हैं। दूसरे जो धर्म वाले हैं वो जानते हैं कि बरोबर, हाँ फलाने टाइम में इब्राहिम आया, बस, और तो कोई दूसरा नहीं है ना ऊपर में धर्म स्थापन करने वाला। बाप तो कहते हैं कि मैं आता हूं इन ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करने, इन ब्रह्मा क्यों कहा, इस ब्रह्मा क्यों नहीं कहा, इस माने एक बचन और इन माने बहुबचन, क्योंकि ब्रह्मा तो अनेकों के नाम पढ़ते हैं, उनमें जो खास खास हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, उनका नाम रूप गाया जाता है। तो बोला है ना, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करने आता हूं। फिर ब्राह्मण धर्म को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी पद मिलता है। पीछे दो कल्प में, दो युग में तो कोई धर्म स्थापन करने वाला नहीं आता है। अपन को देवी देवताएं कहला ही नहीं सकते हैं। ये पतित कैसे देवी देवताएं कहलाएंगे? पतितों में दिव्यता कहां से आएगी? दिव्य तो आकाश को कहा जाता है। ऊंचाई को कहा जाता है। पतित नीचे को कहा जाता है कि ऊपर को कहा जाता है? पतित होगा माने नीचे गिरेगा। तो पतित को दिव्य अथवा देवता नहीं कहेंगे, माना जब तक पतित होते हैं तब तक देवता नहीं है। पतित होते हैं तो देवता नहीं है। अच्छा, हम हवाई जहाज पर रॉकेट पर चढ़ जाएंगे तो देवता नहीं कहे जाएंगे? अरे नहीं कहे जाएंगे। अरे ये मन बुद्धि की बात है, शक्ति क्षीणता की बात है। शक्ति क्षीण होती है तो मन बुद्धि भी नीचे जाती है और शारीरिक शक्ति भी नीचे जाती है। तो ऐसे पतित कैसे अपन को श्री कहेंगे? श्री माना श्रेष्ठ है। तो बाप कहते हैं, मुझे कहते हैं ना श्री श्री जगत पिता, फिर श्री श्री जगत माता, ये श्री श्री अर्थात डबल श्री, ये तो उनको ही कहा जाता है, हैं? किनको? मेरे को नहीं कहा जाता है। किसने बोला? ब्रह्मा ने बोला। ब्रह्मा बोलने वाला है मुरली?
है
शिव बाप है, अकेला है या डबल है? शिव बाप अकेला है, शिव बाबा डबल है, क्योंकि साकार भी है और निराकार भी है, दोनों का मेल है। तो एक साकार और एक निराकार, लक्ष्मी नारायण को क्या कहेंगे? है? क्या कहेंगे? साकार कहेंगे या निराकार कहेंगे? साकार ही कहेंगे। तो ये उनको किसके लिए बोला? मेरे को नहीं, उनको। बाद में वो संसार के सामने पार्ट प्रत्यक्ष होता है। जो पतित साबित नहीं होगा, न मनसा से भ्रष्ट, न कर्मेंद्रियों से भ्रष्ट, और जो शारीरिक शक्ति है, जो हर मनुष्य में थोड़ी थोड़ी है जरूर नंबर वार, उस शक्ति से भी भ्रष्ट नहीं कहा जाएगा, पतनशील नहीं कहा जाएगा। तो जो पतित होते हैं, वो पतित कैसे अपन को श्री कहेंगे? कहेंगे कहां की बात है? कौन से युग की बात? भविष्य के लिए तो कहा, कहेंगे गे माना भविष्य, परंतु ये संगम युग की बात है, जिसे कहते हैं श्याम और सुंदर। श्याम किसको कहा जाएगा? पतित को या पावन को? पतित को। और सुंदर किसे कहा जाएगा? पावन को। तो श्री माना श्रेष्ठ है, पावन जो खुद पावन होगा, अपने संग के रंग से औरों को भी पावन बनाएगा या पतित बनाएगा? पावयति, पवित्र ही बनाता है। तो बाप कहते हैं, मुझे कहते हैं ना श्री श्री जगत पिता, फिर श्री श्री जगत माता, बताओ कौन हुए डबल सी पिता और डबल सी माता? है लक्ष्मी नारायण है
जगत पिता जगत माता।
लक्ष्मी नारायण को डबल सी पिता और डबल सी नारायण कहें? जो नारायण होगा वो सारे जगत का पिता होगा है?
नहीं,
जगत पिता तो सारे जगत का पिता, विश्व पिता, विश्व में तो विश्व धर्म आ जाते हैं। जगत माना सारा जगत, जगत माता सारे जगत की माता, सारे जगत की माता है। तो सब धर्मवासियों को, सब धर्म वालों को अपनी गोद में खिलाती होगी कि नहीं खिलाती होगी? तो किसे कहें?
जगत
माता को। किसे कहते हैं? भारत माता। तो भारतवासियों को दूध में खिलाती है या सारे विश्व धर्मों को गोद में खिलाती है? वो है भारत माता और ये है जगत माता। जगत पिता के साथ जगत माता। तो श्री श्री तो उनको ही कहा जाता है ना। वो जगत माता और जगत पिता, वो फिर श्रेष्ठ बनाते हैं। फिर माने क्या है? फिर माने बाद में। पहले खुद श्रेष्ठ बनते हैं और बाद में नंबरवार सारी जगत की महात्माओं को नंबरवार श्रेष्ठ बना। श्रेष्ठ सिर्फ कहा जाता है देवी देवताओं। जो दिव्यता धारण करते हैं ऊंचाई को धारण करते हैं। दिव्य माना ही आकाश, ऊंची स्टेज। पीछे तो वो भी भ्रष्ट हो जाते हैं। कौन है? देवताएं। अभी अभी फिर हिंदुओं को जो भारतवासी हैं, जो असुल देवी देवताओं को पूजने वाले हैं, वो भ्रष्ट बन जाते हैं। उन्तीस आठ चौसठ की वाणी का आठवां पेज। वो भारतवासी ऐसे भ्रष्ट बन जाते हैं, वो देवी देवता धर्म के तो हैं, परंतु फिर सब भूल जाते हैं। तो प्रायः लोप हो जाते हैं। प्रायः लोप हो जाते मना पूरा लोप नहीं होता देवता धर्म। देवता धर्म की पहचान क्या है? देवताओं में, दैत्यों में अथवा सुर और असुरों में अंतर क्या है? देवताएं दिव्य स्वभाव के होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाले होते हैं, और असुर भ्रष्टाचारी होते हैं, भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले होते हैं, पतित बनते हैं। तो साबित होता है कि जितनी जितनी प्योरिटी होगी उतनी उतनी आपस में यूनिटी होगी। प्योरिटी नहीं तो यूनिटी नहीं। यूनिटी नहीं तो द्वैतवादी। और यूनिटी है तो अद्वैत। तो आर धर्मों की जो प्योरिटी है वो तो दिखाई देने की बात ही नहीं। चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे बौद्ध, चाहे क्राइस्ट, कोई भी धर्म हो, उनके लिए नहीं कहेंगे कि उनकी प्योरिटी प्रायः लोप होती है। उनमें तो प्योरिटी होती ही नहीं, देवताओं में प्योरिटी होती है। तो वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए सारा संसार एक कुटुंब की भांति होता है, क्योंकि कुटुंब का पालन करता एक ही होता है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल। ऐसी पारिवारिक भाषणा सिर्फ अंत तक भारत में कहीं कहीं देखी जाती है। क्योंकि भारत में ही आज भी ऐसे ऐसे परिवार हैं, 50-50, 60-60 के यूनिटी वाले ऐसे परिवार हैं, जिनका पालन करता मुखिया एक है, एक जिस रास्ते पर जाएगा पूरा परिवार उसको फॉलो करेगा। नहीं तो बौद्धा क्या देखा जाता है, एक ही परिवार में एक कांग्रेस को वोट देगा, दूसरा जनता पार्टी को वोट देगा, तीसरा खुद ही स्वतंत्र खड़ा हो जाएगा, पूरे परिवार में फूट, और आमने सामने एक दूसरे से वाचा का झगड़ा, मारामारी पर भी उतर आते हैं। भारत में दोनों ही प्रकार के परिवार देखे जाते हैं, लेकिन प्योरिटी से यूनिटी धारण करने वाले परिवार प्रायः लोप है। उनकी यूनिटी के चित्र रहते हैं, परंतु कोई नहीं समझते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब और किसने स्थापन किया। सतयुग की आयु ढेर लाखों वर्ष लगाई दिए है, तो इसलिए कहा जाता है कि वो जाते हैं, वो देवताएं जो दिव्यता धारण करने वाले हैं वो जाते हैं, फिर उनके चित्र रह जाते हैं। जैसे आटे में लून भले सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता, कहते हैं सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, सौ परसेंट सब कुछ झूठ नहीं बनता है, कुछ रहता है, इसलिए गाया जाता है आटे में लून। ये श्रीमद् भगवत गीता में कुछ न कुछ है, और शास्त्रों का नाम क्यों नहीं लिया, है यज्ञ के आदि में भी कौन से शास्त्र की व्याख्या करते थे? श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की ही व्याख्या की जाती थी। बाद में व्याख्या करने वाले का नाम निशान गुम हो गया। बाबा तो कहते हैं लाश भी गुम कर दी। और जो व्याख्या की थी उस व्याख्या के पत्ते पत्ते क्या कर दिए हैं? मिट्टी में मिलाए दिए, धरनी में गाड़ दिए। किसने गाड़ दिए हैं? दीदी दादी दीदी दादियों में कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं होंगी है? होंगी या नहीं होंगी? तो श्रीमद् भगवद गीता में कुछ न कुछ है और शास्त्रों में नहीं उतना कहेंगे। गीता का ही क्यों बोलते हैं? एक तो भगवान वाच, एक ही शास्त्र है। तो क्या जो मनुष्यों ने गीता लिखी वो भगवान वाच है? वो मनुष्यों की लिखी गीता भगवान वाच नहीं, इसलिए कुछ न कुछ बोला। सारे के सारे श्लोक सच्चे हैं। जैसे भगवान ने बोले वैसे ही सच्चे हैं, ये नहीं कहा। कुछ न कुछ गड़बड़ है। यादव कौरव पांडव ये सभी नाम तो है ना, नाम माने नाम का आधार क्या? काम। कौरव क्या करत भाई, पांडव क्या करत भाई, कुछ काम किया? क्या किया? कौ माने कौआ, रब माने शोरगुल। तो कौरव क्या करे तो भाई है? कौओं की तरह बहुत ढेर सारा संसार में शोरगुल करत भाई, बहुत भाषणबाजी करत भाई, भाषणबाजी बहुत। और प्रैक्टिकल में कौआ क्या करता है? प्रैक्टिकल में क्या खाता है? है गंध खाता है। और काव काव बहुत करता है, आओ काव, तुम भी आओ, तुम भी खाओ, हम भी खाओ। परमिशन दे देते हैं, 5-star होटल खोलो, खुद भी जाते हैं, दूसरों को भी बुलाते हैं। जब बड़े बड़े इलेक्शन होते हैं तब इनकी काव काव देखो। और होटलों में जो शराबी धंधा चलता है, गंध बिखरती है, वो देखो। तो ये भारतवासी जो देवी देवता थे, जब धम भ्रष्ट बनते हैं तो सब भूल जाते हैं। तो नाम पड़ता है कौरव कांग्रेसी। कहते हैं बाबा सर्वधर्मान परित्यज्य। क्या द्वापर में सर्वधर्मान थे? है द्वापर में थोड़े धर्म होते हैं या सब धर्म होते हैं? सब धर्म कहाँ होते हैं? तो कलयुग में ही के अंत में ही होंगे। और वो सब धर्म देहधारी मनुष्य गुरुओं के द्वारा स्थापन किए हुए हैं या निराकार विदेही भगवान के द्वारा स्थापन किए हुए हैं? तो ये अक्षर ठीक है गीता में क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दो, परित्याग कर दो। अच्छा, सब धर्मों को छोड़ दें और धर्म पिताओं को न छोड़े, याद करते रहे उनको, चित्र उनके फोटो गले में लटकाए ले, मकान की दीवारों में लगाए दे, तो नहीं चलेगा है? सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब भी है उनके बीज को भी त्याग दो, बुद्धि से निकाल दो कि वो सत्य हैं, शिव हैं, कल्याणकारी हैं, सुंदर हैं। नहीं, बाहर से देखने में कितने भी सुंदर हो, ऊंची ऊंची महलमाणियां अट्टालिकाएं देखने में आती हो, लेकिन अंदर से एकदम भोंडे हैं। बाहरी सुंदरता और मानसिक सुंदरता में बहुत अंतर। इसलिए इसका प्रूफ क्या होगा? कोई प्रूफ होगा या नहीं? है या नहीं? जीवघात, सुइसाइड ज्यादा कहाँ होता है? विदेशों में होता है या भारत में होता है? और भारत में भी अगर होता है तो भारतवासियों के द्वारा विदेशी संस्कृति अपनाने के बाद होता है या ऐसे ही होता है? तो बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, क्योंकि बाहर से सुंदर दिखाई देते हैं, अंदर से बड़े भोंडे हैं, इसलिए परित्यज्य। परिमाने त्यज्य माने त्याग, त्यागने योग्य। परिमाने चारों ओर से, ऐसे नहीं एक कोने से अपना लो, चारों तरफ से परित्यज्य, पूर्ण रूप से त्यागने योग्य हैं। उनके धर्म पिताओं की याद भी त्याग दो कि वो कल्याणकारी है, शिव है। नहीं, एक शिव बाबा है, दूसरा न कोई। एक शिव बाबा ही है सत्यम शिवम सुंदरम 100%, और बाकी सब में असत्य भरा हुआ है, स्वार्थ भरा हुआ है, दूसरों के लिए कल्याण भरा हुआ है। वो सिर्फ अपना कल्याण चाहते हैं, कोई भी ऊंचे ते ऊंचे धर्म पिताएं विदेशी क्यों न हो, स्वार्थी है या नहीं है? जिनको रथ होगा वो स्वार्थी जरूर होगा, और नरको नारायण बनाने वाला जो धर्म पिता है मनुष्य को देवता बनाने वाला जो धर्म पिता है वो स्वार्थी है या सदा परमार्थी है? है? क्यों? क्यों? क्योंकि उसको अपना रथ है ही नहीं, तो स्वार्थ का नाम निशान नहीं। स्वर्ग के सुख भोगता है, स्वर्ग के सुख भोगने का शरीर से जो सुख भोगे जाते हैं वो आकांक्षा है उसे? नहीं है। तो बाबा कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, ये अक्षर बिल्कुल ठीक है, ठीक तो है, पर कहता कौन है, कि सर्वधर्मान परित्यज्य कौन कहता है? हैं? नहीं, श्री कृष्ण जो कलाओं में बंधा हुआ है, जो कलाहीन बनता है, 16 कला संपूर्ण बनता है, वो कहता है, वो कैसे कहेगा सर्वधर्मान परित्यज्य? है? वो ही कह सकता है जो खुद निस्वार्थ हो, सदा निस्वार्थ, सदा कल्याणकारी, सर्व का कल्याणकारी, अपने लिए सोचने वाला नहीं कि मैं भी स्वर्ग के सुख भोगूं, नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य। कृष्ण भगवान कहते हैं ये बिल्कुल झूठ, भगवान बाप भी कहते हैं बच्चे ये देह के सभी धर्म भूल, अपन को आत्मा समझो, और अपने बाप को याद करो। किसको याद करो? अपने बाप को, माना इसके बाप को है? वो किसके बाप को? आत्माओं के बाप को याद करो। अच्छा, जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, जो आत्मा कही जाती हैं, वो आत्मा अविनाशी है या विनाशी है? अविनाशी। अविनाशी हैं, तो जो एक जन्म लेने वाली आत्माएं हैं पूरे कल्प में चतुर्युगी में, वो विनाशी आत्माएं हैं या अविनाशी आत्माएं हैं? तो सारी मनुष्य सृष्टि में कितनी आत्माएं हैं? अरे कितनी आत्माएं हैं?
750 करोड़।
750 करोड़ है। उन 750 करोड़ में एक दो जन्म लेने वाली कोई नहीं है,
होगा।
तो वो आत्मा है अविनाशी, अविनाशी आत्मा है, है? कि उनका पार्ट ही विनाश हो जाता है इस षष्टि चक्र में। विनाशी कहे या अविनाशी कहे?
है?
पार्ट नहीं होने से विनाशी कहेंगे। इससे साबित हुआ कि 84 जन्म का पूरा पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं हैं वो ही अविनाशी आत्माएं हैं।
हैं? 84 से कम वाला को नहीं बोल पाएंगे
तो। उनका एक जन्म का विनाश नहीं हो गया? नहीं हुआ?
आत्मा आत्मा अविनाशी तो नहीं
करता।
आत्मा आत्मा अविनाशी तो नहीं करता
है। सृष्टि का एक एक कण वो विनाशी है, अविनाशी है?
विनाशी
है। क्यों? माना जीवन है तो अविनाशी कहे, और जीवन ही खत्म तो क्या कहे? विनाशी। आत्मिक स्थिति है तो अविनाशी। कोई कहेगा जो आत्मा एक जन्म लेती है 5000 साल तो परम धाम में पड़ी रहती है, कुछ कम सही? तो विनाशी कहें या अविनाशी कहें? क्या कहें? है? हाँ, परम धाम में है, वहां तो कोई अनुभूति होती ही नहीं। जिंदा होने या मरने की कोई बात ही नहीं। परम धाम में तो सभी आत्माएं जड़वत, कोई जीवन नहीं। तो बोला अपन को आत्मा समझो और देह मत समझो। और किसको याद करो? आत्मा के बाप को याद करो, देह के बाप को नहीं। देह का बाप कौन है? देह का बाप बुंदु। देह विनाशी और उसका बाप अविनाशी है। देह विनाशी तो देह का बाप भी विनाशी, आत्मा अविनाशी, आत्माओं का बाप भी अविनाशी। तो जिस देह में मैं प्रवेश करता हूं वो देह विनाशी है या अविनाशी है? है?
देह अविनाशी है।
देह तो विनाशी है, देह थोड़ा ही 5000 साल तक जीवित रहेगी। तो अपनी आत्मा के बाप को याद करो। भगवान बाप भी कहते हैं बच्चे, देह के सभी धर्म भूल अपन को आत्मा समझो और अपने बाप को याद करो, क्योंकि अभी ये खेल पूरा होता है। क्या खेल शुरू होता है? تو رنگ منچ پر ایکٹ ہوتی ہے اور کھیل ختم. تو یہ جو ششٹی روپی رنگ منچ ہے اس پہ ناٹک ہوتا ہے نہیں؟ دیکھتے نہیں ہو؟ وناش ہو رہا ہے. ارے دیکھتے ہو وہ 2500 سال سے وناش نہیں ہو رہا ہے. ارے ہو رہا ہے کہ نہیں؟ 2500 سال پہلے جب سشٹی میں اردھ وناش ہوا تھا اس کے بعد سے لگاتار وناش ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ دھیمی گتی سے پہلے ہوتا ہے پھر بعد میں تیورتا بڑھتی جاتی ہے. تو وناش ہو رہا ہے اور پھر گیٹس کھل رہے ہیں. کیا؟ جتنا جتنا اس ششٹی روپی رنگ منچ پر وناش ہوتا جائے گا اتنا اتنا گیٹس بھی کھلتے جائیں گے. پہلے منسا کے گیٹس کھلیں گے کہ انڈیا گیٹ کھل پڑے گا؟ ہے پہلے منسا کی بات ہے.